दोस्तों, ऑफिस सेक्स आइटम गर्ल कहानी के पहले भाग में आपने पढ़ा कि बॉस के केबिन में चुदाई का खुला खेल। मीटिंग ख़त्म होते ही दीपक ने मेरी स्कर्ट खींचकर ऊपर उठाई, मुझे टेबल पर झुकाया और मेरी गांड को मारने लगे। तभी दरवाज़ा बजा। दीपक ने अंदर से ही धीरज को फ़ोन लगाया, कौन है बदतमीज जो दरवाज़ा खटखटा रहा है? गुस्से में दीपक बोले, उनका मेरी गांड मारने का कार्यक्रम अधूरा रह गया था। सर, रोशनी है, परेशान लग रही है, धीरज ने जवाब दिया। तो तुम संभालो उसे, साला यहाँ चुदाई का मूड खराब कर दिया रंडी ने। जी मैं देखता हूँ, धीरज ने कहकर फ़ोन काट दिया। अब दीपक दोबारा गर्म होने के लिए मुझे चूमने लगे, बोले वीनस तो इतनी गर्म है, जिसम और लोड़े की ठंड का इलाज है तू, ठंडी रोशनी का भी तू ही इलाज है। कहाँ पहले रोशनी हर रोज़ मेरे नीचे लेटती थी, कभी चूसती थी, कभी मरवाती थी। धीरज और मैंने मिल के बहुत चोदा है इसे, इसको हमने बड़े बड़े 5 सितारा होटलों में ले जाकर चोदा है। जब से कॉर्बेट से आई है साली बहुत भाव खाने लगी है, आज रंडी को उसकी औकात पता चली है, रोने दो उसको। फिर दीपक बोले, तू मेरे पास आ जा जाने मन, बोले तुझे अपनी सेक्रेटरी बना लूँगा, जहाँ जहाँ जाऊँगा तू मेरे साथ चलेगी और फिर यूँ छिप छिप कर चुदाई नहीं करनी पड़ेगी। कैसा लगा आइडिया? अपना आइडिया बताते बताते वो गर्म होने लगे। मेरी स्कर्ट जो गांड मारने के लिए उन्होंने पहले ही ऊंची कर दी थी, उसमें हाथ डालकर मुझे उंगली करने लगे। वीनस, हाय तेरी ये गर्म चूत कभी निराश नहीं करती, तुझे जब चूदना चाहो तब तू गर्म होती है, रोशनी तो इतनी मेहनत करवाती है, साले को पहले चूसो, उंगली करो, लोड़ा खिलाओ, बाद में देती है कुछ, और तू मेरी रानी, झुकाते ही गीली, हर मर्द का सपना है तू, हर लंड की जन्नत बसती है तेरी टांगों के बीच में। दीपक की ये बातें सुनकर मुझे भी मज़ा आ रहा था। मेरे और दीपक के रिश्ते मेरी अपनी सोच कोई मायने नहीं रखती थी, इसलिए मैं दीपक को जो जैसा सोचने देती थी मैं उसे बढ़ावा देती। मुझे तो केवल कुछ वक्त का तजुर्बा लेना था कंपनी से। बाहर से अब दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ बंद हो गई और किसी के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। गौर से सुनने पर मैं जान गई कि वो रोशनी है। रोशनी ऊंची आवाज़ में चिल्ला रही थी, क्या सब के सब दोगले हैं, झूठे वादे करके अपने जाल में फंसाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब दीपक का पारा चढ़ने लगा था, अपनी रोबदार छवि पर वो दाग नहीं लगने देना चाहते थे, उनके लिए रोशनी को चुप कराना ज़रूरी हो गया था। उन्होंने मेरी चूत से हाथ हटाया और तनाव भरे मुंह से कहा, कपड़े ठीक कर लो जल्दी। ये बोलते उन्होंने अपना लोड़ा पतलून में वापस डाला। मुझे अपने कपड़े ठीक करने में वक्त लग रहा था, मेरी स्कर्ट तंग थी और कमीज़ ब्रा के अंदर से चूचे भी बाहर निकल रहे थे, तो मुझ पर बरस पड़े, साला एक स्कर्ट भी नीचे नहीं होती, तुमसे 2 बटन लगाने में कितना वक्त लगता है। रोशनी का गुस्सा मुझ पर फूट चुका था, दरवाजे पर खड़े रोशनी की बातें सुनकर आपाक हो रहे थे। गुस्से मेरे पास आए बहन चोद और मेरी कमीज के बटन लगा के बोले, रंडी साली, उतारूँ भी मैं, पहनाऊँ भी, कुछ काम नहीं आता तुम रंडी को, बस टांगे खुलवा लो जितनी मर्जी, अभी 2 लोड़े ले जाएंगे तो 1 सेकंड नहीं लगेगा छिनाल को नंगी होने में। गुस्से में आग बबूला केबिन से बाहर चले गए, मैं अंदर बैठी रही। अब मुझे बाहर से दीपक के ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, रोशनी फ्लोर पर सीन क्रिएट मत करो, हम बैठ के बात करते हैं, कम लेट्स टॉक, तमाशा करके कुछ नहीं होगा, आई एम हेयर टू लिसन ऑल योर ग्रीवेंस। पर रोशनी हल्के में चुप बैठने के भाव में नहीं थी। सर, आप क्या इशू सॉल्व करेंगे? आप ही तो इशू की जड़ हैं। रोशनी की बात सुनकर दीपक को लगा कि उसका पर्दा फाश हो जाएगा, तो उन्होंने तुरंत धीरज को बोला, इसे ले जाओ, पानी पिलाओ, मैं भी एचआर को फ़ोन करता हूँ, ऐसा एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं कर सकते टीम में। अब दीपक ने पूरा मन बना लिया था रोशनी को नौकरी से निकालने का। आप सभी तो जानते हैं कि गद्दी पर बैठे राजा के हाथ खून से रंगे होते हैं, कुर्सी आहुति मांगती और आज रोशनी की आहुति दी जाने वाली थी। तब तक शोर सुनकर एचआर नीलम भी आ गई थी, धीरज रोशनी को ले गए। अब रोशनी, धीरज और नीलम एक मीटिंग रूम में बैठकर बातें करने लगे। करीब 2.5 घंटे मीटिंग चली, तब तक दीपक का मूड खराब हो चुका था और इस ड्रामे के बीच में चुपके से दीपक के केबिन से मैं बाहर आ गई। जब सबका ध्यान दीपक और रोशनी की लड़ाई पर था, मैं उस दिन दफ्तर में रोशनी से बात नहीं कर पाई थी। उस शाम जब मैंने रोशनी को फ़ोन किया तो मुझे मालूम हुआ कि उसे नौकरी से निकाला जा चुका है और कंपनी निकालने के एवज में कोई भुगतान भी नहीं भर रही है। धीरज और दीपक ने मिलकर उसके साथ खेल खेला। जब तक वो हाँ में हाँ मिलाती रही, तब तक दोनों ही उसकी जवानी का पूरा मज़ा लेते रहे, उसे घुमाते रहे। पर उसने अब सब मुँह खोल कर अपनी तरक्की चाही तो उसे अंडर परफॉर्मर कहकर नौकरी से निकाल दिया। नॉन परफॉर्मर को निकाले जाने का कोई हर्जाना नहीं मिलता। यदि गलती कंपनी की हो, जैसे काम बंद हो गया, नुकसान हो गया, कंपनी डूब गई, तब कर्मचारी को हर्जाने के रूप में नोटिस पीरियड का टाइम दिया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक अच्छी कंपनी अपने सभी कर्मचारियों का अपने प्रावधानों से प्रावधानों के वक्त को साथ बदलते हुए, उनकी सुख सुविधा देकर बनाने का प्रयास करते हुए हर संभव कोशिश करती है। एक बार फिर याद दिला दो, जिस कंपनी में रोशनी और मैं काम करती थी, वो अच्छी कंपनी की श्रेणी तो क्या उसके आसपास भी नहीं थी। रोशनी ने मुझे बताया कि नीलम ने उसे बहुत सी ईमेल दिखाई जो पिछले कई महीनों से एकत्र की जा रही थी। सभी की सभी ईमेल धीरज और दीपक के बीच में थी। उन सभी में रह रहकर यही जिक्र था कि रोशनी के काम में कितनी गलतियां हैं, कितनी बार क्लाइंट ने काम की खराब प्रतिक्रिया दी है और इस कारण उसकी तरक्की नहीं हो पाई। रोशनी ने नीलम से कहा, दीपक और धीरज दोनों ने ही कभी यह सब उसके साथ साझा नहीं किया, वरना वो अपने काम पर ध्यान देती। दोनों को अपनी रंगरलियाँ मनानी थी बस। नीलम ने रोशनी को ये कहकर चुप करा दिया, तुम्हें निकाला जा रहा है, इसलिए अब तुम सब पर कीचड़ उछालोगी, किसी तरह से चाहोगी बदला लो। तुम्हारे इन सब बातों का कोई ठोस सबूत नहीं है, यदि ऐसा था तो शिकायत करती। रोशनी के पास भी कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि वह भी जानती थी कि उसने भी अपने जिस्म से दीपक और धीरज का इस्तेमाल करवाना चाहा। दीपक और धीरज के साथ सोना उसकी सोची समझी चाल थी आसान रास्ते से नौकरी में ऊपर चढ़ने के लिए। फ़ोन पर रोशनी को दिलासा देने के अलावा मैं कुछ कर भी न सकती थी। इस सब के बाद मैंने भी सबक लिया और काम पर ध्यान देने की ठानी, परंतु दीपक और धीरज को तो मेरी गांड मारने से ही मतलब था। मैं और रोशनी हर दूसरे दिन फ़ोन पर बात करती, कई बार हमारी बातें फ़ोन सेक्स में तब्दील हो जाती, पर रोशनी का फ़ोन सेक्स मेरे लोड़ों की भूख का इलाज नहीं था। इन सब के वाक़े 2 हफ्ते बाद हमें मसूरी जाना था। इस बार दीपक ने मुझे पहले ही कह दिया था कि वो अपनी गाड़ी लेकर जाएंगे और उनके साथ उनकी गाड़ी में मैं भी जाऊंगी, धीरज और नए मैनेजर भी होंगे। ये दीपक को सोची समझी चाल थी मुझे नए मैनेजर को परोसने की। मैनेजर लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, अपडेट करने की जिम्मेदारी सभी नए मैनेजर की थी। मुझे दीपक ने मेरे घर से पिक किया और इन दिनों पूर्वी दिल्ली के एक भीड़ भाड़ इलाके में रहती थी। मेरे पहले तो धीरज के एम्स को पिक कर चुके थे। नए नए बने मैनेजर मोहित वैशाली में अपने परिवार के साथ रहते थे, मेरे बाद उन्हें पिक करना था। जब मैं गाड़ी में बैठी तो दीपक गाड़ी चला रहे थे और धीरज आगे उनकी बगल की सीट पर बैठे थे। मैं पीछे बैठने लगी तो धीरज गाड़ी से उतरते हुए बोले, तुम आगे बढ़ो, थोड़ा दीपक को भी मज़ा लेने दो। मैं भी आगे बैठ गई। उन्होंने दीपक के साथ सीट के दोनों ओर हाथ आगे कर मेरे चूचों को भींच दिया और मेरी आह सुनकर ठाके मारते हुए हंसने लगे। बोले, अब तो आर्डर डाल लो, अगर इतनी चुदाई के बाद भी चूचे भींचने पर अचंभा हो रहा है तो इसका मतलब ठीक से नहीं हो रही क्या? दीपक भी बोले, कोई बात नहीं, मसूरी में पूरा मसल देंगे। धीरज के हाथ अब मेरी टी शर्ट के अंदर घुस चुके थे। तभी दीपक ने मेरी सीट के साइड में लगा सीट पीछे करने का लिवर उठाया और मेरी सीट धीरज की गोद में जा गिरी। मुझे सीट बेल्ट में बांधा पाकर धीरज बेकाबू हो रहा था। उसने हाथ बाहर निकाल कर टी शर्ट के गले से अंदर डाल दिए और मेरे उरोज मसलने लगा। दीपक ने गियर वाले हाथ से देखते ही देखते मेरी जींस की जिप खोल दी और एक हाथ मेरी कच्छी में डाल लिया। मैं ऑफिस की आइटम गर्ल थी, जानते थे गाड़ी में दोनों मुल्क मेरे साथ ऐसा ही कुछ करने वाले हैं, तो वैशाली का नाका आने वाला था। धीरज ने मेरे चूचे छोड़कर मोहित को फ़ोन लगाया। हाँ मोहित, हम वैशाली नाके पर हैं, पहुँचने वाले हैं, मोहित की बताई जगह। और पहुँचते पहुँचते मेरी सीट दोबारा खड़ी कर दी। मोहित, इनसे मिलो, ये हैं वीनस, दीपक सर की खास। मोहित भी हल्के से मुस्कुरा दिया। मोहित दीपक के पीछे बैठा था और मेरी भरी हुई जवानी के तराशे हुए जिस्म को कपड़ों के ऊपर से देख रहा था। वो देख पा रहा था कि दीपक रह रहकर बार बार मेरी जांग पर हाथ रख के फिरा रहे हैं। मोहित को समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि मैं दीपक की रंडी थी। अब गाड़ी में द्व्यर्थी बातों का दौर शुरू हो गया। दीपक बोले, बड़े इंजन की गाड़ी सभी को चाहिए पर हर किसी को नहीं मिलती। मोहित भी बोले, सर बड़े इंजन की गाड़ी में पेट्रोल भी तो ज़्यादा लगता है ना। सभी बड़े बड़े मोटे रोज़ों वाली औरतों की बात कर रहे थे। थोड़ी देर में दीपक ने मोहित को आगे बैठने को आ और गाड़ी साइड पे लगा दी। जब मैं गाड़ी से बाहर निकली तो मोहित ने मुझे ऊपर से नीचे तक अच्छे से देख लिया और उसने देखा कि मेरी जींस की जिप और ऊपर का बटन खुला है। वो हल्के से कामुक मुस्कान देकर आगे बढ़ गया। अब मैं पीछे आ चुकी थी। दोस्तों, बाकी की कहानी अगले भाग में।